Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jnana Kriye Sive Nikyat Sankrante Sarvajantusu. अब ये केवल मनुष्य की बात नहीं कर लेना, सर्व जंतुसु, अब छोटी सी मुंगिया चींटी है ना, लाल चींटी को मुंगी कहते हैं ना गुजरात में, क्या कहते हो है, कीड़ी कीड़ी है, लाल चींटी छोटी सी है, उसमें भी ये मीठा है, ये मीठा इतर है, इसमें मीठापना नहीं है, ये ज्ञान जानने की क्षमता शिव से जुड़ने के कारण ही आई है। चींटी में क्या ज्ञान शक्ति नहीं है? ये हमारे बिरादरी के हैं, उनकी एक भूल एक झुंड होता है, ये हमारे जाति के हैं, सूंघ लेते हैं तो पहचान लेते हैं हमारे ग्रुप का है चींटियां, और ये रास्ता सीधा हमारा चलने का है तो सूंघते हुए चलते हैं, इसलिए वो भटकती नहीं है, ठीक अपने, और ये हमारे खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ नहीं है। कहते हैं ना कि गोबर के ढेले के ऊपर एक चीनी का ढेला रख दो छोटा सा कण, तो लाल चींटी पूरे गोबर के पहाड़ को चढ़ते हुए उसी चीनी के कण पर पहुंचकर उसको ग्रहण करती है, और गोबरेला कीड़ा जो है वो चीनी के ढेर के ऊपर थोड़ा गोबर रख दो तो पूरे चीनी के ढेर को चढ़ते हुए ऊपर गोबर, क्योंकि गोबरेली को ये पता है कि मेरा खाने का पदार्थ सबसे ऊपर है, तो वो उसी को खोजता है, चीनी खाकर संतुष्ट नहीं होगा गोबरेला, गोबर का कीड़ा, और चींटी गोबर खाकर संतुष्ट नहीं होगी, मेरा खाद्य ये है, तो अपने अपने स्वभाव अनुसार अपना अपने खाद्य पदार्थों को जानने की और खोजने की ये ज्ञान शक्ति और खोज कर ग्रहण करके लाने की ये क्रिया शक्ति। आपको आश्चर्य होगा चींटी से 10 गुना बड़ा कोई कीड़ा मरा हुआ उसको मिल जाए वो चींटी उसको खींचते ले आती है, अपने शरीर से 10 गुना बड़ा है उसका शरीर, मरा हुआ कहीं मिल गया उसको खींच कर ले आती है, वो खींचने की क्षमता कहां से आ गई उस चींटी में, वो शिव के साथ जुड़े बिना वो क्रिया शक्ति नहीं आ सकती है, इसलिए वो चींटी भी शिव से जुड़ी हुई है, यानी शिव से जुड़ी हुई है का मतलब है शिव ही है, ये तो वेदांत की दृष्टि है, क्योंकि क्रिया शक्ति शिव के बाहर और कहीं नहीं रहता है, और ये मेरा खाद्य है जानने की क्षमता ज्ञान शक्ति कहां से आ गई उसको, शिव से भी नहीं कहना चाहेंगे वेदांती, तो वो शिव ही है, वो अपने ज्ञान अपने उपाधि के अनुसार प्रयोग कर रही है, फिर ज्ञान में क्रिया में क्षमता में ये अंतर क्यों आया, तो ये अंतर आने में उपाधि का भेद है, उपाधि की क्षमता पर निर्भर करता है, जैसे पावर हाउस से मीटर बॉक्स से बिजली एक ही आपके घर में प्रवाहित है, अलग अलग बिजली तो है ही नहीं, एक ही पावर हाउस से एक ही सब स्टेशन से एक ही लाइन से आपके मीटर बॉक्स में आया है, और उसी लाइन से आपके अलग अलग कमरों में कनेक्शन के रूप में विभक्त किया हुआ है, और मल्टी प्लग जो एक आपने रखी है एक्सटेंशन मल्टी प्लग रखी है आपने, उसी में दो प्लग है, एक प्लग में हीटर का पॉइंट लगा दो और दूसरे प्लग में रेफ्रिजरेटर का पॉइंट लगा दो, प्लग लगा दो, बात समझ गया कि नहीं, मल्टी प्लग तो एक ही है, मल्टी प्लग एक ही होने के कारण दो पॉइंट है वहां, एक में हीटर का पॉइंट प्लग जोड़ दो और एक में रेफ्रिजरेटर का, अब रेफ्रिजरेटर गर्म करेगा कि ठंडा, वो पानी एकदम ठंडा करेगा वो, और हीटर गर्म करेगा। ये विरोधाभास जो आपको प्रतीत हो रहा है, ये विरोधाभास होने में, विपरीत भावास होने में वह यंत्र की कैपेसिटी, यंत्र की योग्यता है, क्षमता है कि उसी बिजली के माध्यम से वह यंत्र गर्म और उसी बिजली के माध्यम से वह यंत्र ठंडा करता है। तो बिजली न ठंडी है न गर्म है, बिजली गर्म भी नहीं करती है और बिजली ठंडा भी नहीं करती है। ठंडा करना और गर्म करना ये बिजली की योग्यता नहीं है। ठंडा करने का यंत्र है तो वह ठंडा उसी बिजली के माध्यम से ठंडा, गर्म करने का यंत्र है तो उसी बिजली के माध्यम से वो गर्म। तो यंत्र पर निर्भर करता है, आप जिस उपाधि को लेकर बैठे हो वही यंत्र है ना। आपका जो यंत्र है, आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, आपका जो यंत्र है पावर तो वही है। आपका जो यंत्र है उस यंत्र में गर्भाधारण करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। और आपकी जो यंत्र है वो गर्भाधान करने की योग्यता का है तो आप गर्भाधान करके बच्चा पैदा करते हो। परंतु गर्भाधान करने की क्षमता होने में भी वही शक्ति आप में संचार है, गर्भाधान करने की क्षमता न होने में भी वही शक्ति, वही चेतनता आपके यंत्रों में प्रवेश कर रही है। समझ गया कि नहीं? ये क्या है, यंत्र है, ये दो यंत्र है, एक बच्चा जन्म देने की क्षमता वाला यंत्र, एक बच्चा जन्म देने की क्षमता बिना का यंत्र। तो इस यंत्र में प्रवाह संचार हुआ हुआ चेतना, क्योंकि चेतना नहीं है इसलिए बच्चा नहीं पैदा कर रहा, ये अर्थ नहीं कर लेना। यंत्र की कैपेसिटी नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और यहां यंत्र की कैपेसिटी है तो वो काम हो रहा है। चेतना दोनों ही एक ही, जैसे मल्टीप्लॉक में पावर दोनों प्लॉक पॉइंट में एक ही है, एक पॉइंट में फ्रीज का प्लॉक लगा दिया तो पानी ठंडा करती है और दूसरे पॉइंट में हीटर का प्लॉक लगा दिया तो वह गर्म होने लग जाता है। तो गर्म करना और ठंडा करना बिजली का काम नहीं, गर्म करना और ठंडा करना यंत्रों का काम है। इसी प्रकार के आपके यंत्र में वह कैपेसिटी है कि चींटी से ज्यादा जान सकते हैं और चींटी से ज्यादा कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? आपके यंत्र की वो विशेषता है, लेकिन वो ज्ञान और क्रिया तो उसी परमात्मा का है। इसी तरह चींटी में जो ज्ञान क्रिया है उसका यंत्र छोटा है, यंत्र की कैपेसिटी अलग है, लेकिन ज्ञान और क्रिया तो उसी परमात्मा का। चींटी भी उसी शिव से जुड़ी हुई है तब कुछ कर सकती और जान सकती है। आप भी उसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं और कुछ जान सकते हैं। ये अल्पज्ञता, अल्पक्रियाता ये आपके स्वरूप में नहीं है, आपके यंत्र पर है। यंत्र, यंत्र माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का निर्भर करता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर निर्भर करता है। अयं घटो अयं पट इत्येवन्नाना प्रतीतिषु अर्क प्रभेव स्वज्ञानम स्वयमेव प्रकाशते। व्यवहार में आप ये कहते हो ये माला है, ये पेपर वेट है, ये कागज है, ये पुस्तक है, लाउड स्पीकर है, ये आप अलग अलग जानते हो कि नहीं? ये अयम घट अयम पट इति एवं नाना प्रतीतिषु, संसार में जीव भी जितने भी पदार्थों की प्रतीति आपको होती है वह ठीक अर्क के प्रभाव यानी सूर्य के प्रकाश की तरह आप परमात्मा का ज्ञान ही आपकी प्रतीति का कारण बनकर विषयों को प्रतीत कराती रहती है। जैसे ये पेपर वेट, ये माला, ये कागज, ये सबको प्रकाशित करने वाले बत्ती एक ही है, एक ही बत्ती सबको प्रकाशित कर रही है। इसी तरह एक ही शिव का ज्ञान, वो ज्ञान प्रकाश ही आप में रहकर वो अयम 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 घटा अयम पटादि व्यवहार का कारण बन रहा है। वो शिव से अलग होता तो फिर ये क्षमता तुम्हारे में ना आती है। ज्ञानम चित स्वयं सिद्धं जगत अंधत्वमतो भवेत। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये शिव से जीव में नहीं आया है, ये सांख्यों का कहना है, विशेष करके सांख्य दर्शन की मान्यता है। जीव में जो ज्ञान शक्ति है और जीव में जो क्रिया शक्ति करने की शक्ति है वह शिव यानी परमात्मा से जुड़कर नहीं आया है, प्रकृति से जुड़कर आया है। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग माने सीधा सांख्य दर्शन ही मानता है, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण विद्यमान हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में ज्ञानता है और ये गीता में इसका सपोर्ट कर दिया है, गुणत्र विभाग योग चतुर्दश अध्याय में सत्वात् संजायते ज्ञानम, वहां बता दिया कि नहीं। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से ज्ञान की सिद्धि होती है। तो सांख्य क्या कहना चाह रहे हैं, जीव में जो ज्ञान क्षमता है, अयम घट अयम पट ये जानने की क्षमता है, वह परमात्मा से जुड़ने के कारण नहीं अपितु प्रकृति से जुड़ने के कारण है। और ये जीव में जो ज्ञान शक्ति है प्रकृति के सत्वगुण के चलते है, क्योंकि तुम्हारे जो स्थूल शरीर, तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि अंतःकरण है वह वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार भी समष्टि सत्वगुण का कार्य है। अब ध्यान देना, वेदांत की प्रक्रिया में बता रहा हूं, वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःकरण की उत्पत्ति का कारण क्या है, अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि सत्वगुण से अंतःकरण बनता है। व्यष्टि सत्वगुण से पांच ज्ञान इंद्रिय बनते हैं, ये वेदांत की प्रक्रिया है, और बुद्धि अंतःकरण और ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जानने की क्षमता आती है कि नहीं बोलो। ये माला है जो किसके द्वारा देखा तुमने, आंख के द्वारा ना, और ये आंख बनी किसके द्वारा, तो सांख्य कहते हैं कि सत्वगुण, व्यष्टि सत्वगुण आंख, समष्टि सत्वगुण मन, और मन और आंख का दोनों का संबंध हो जाएगा तभी जाकर विषय का ज्ञान होगा। मन अन्यत्र हो और आंख अन्यत्र हो तो आंख खुले होने पर भी विषय का प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है, ये आपके अनुभव में भी आ रहा है। कान जो शब्द सुन रहे हैं ये सुनने की क्षमता, ये कान श्रोत्री इंद्रिय, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, शब्द को जानने की क्षमता वाली इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। ये ज्ञान इंद्रियां यानी श्रोत्री इंद्रिय बनी किस कारण से, आकाश में विद्यमान जो सत्वगुण है उसके द्वारा श्रोत्री इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है, ये वेदांत की प्रक्रिया भी यही है। और अंतःकरण उस श्रोत्री इंद्रिय के साथ संबंध हो, अंतःकरण समष्टि सत्वगुण से और श्रोत्री इंद्रिय व्यष्टि सत्वगुण से, समष्टि सत्वगुण से बना हुआ अंतःकरण, व्यष्टि सत्वगुण से बना हुआ श्रोत्री इंद्रिय, दोनों का संबंध हो गया तो फिर शब्द सुनने में समर्थ हो गया। अन्यथा क्या होता है, कान खुला ही रहता है, बोलने वाला बोलता रहता है, वो समझता नहीं, ऐ ध्यान दे के सुन कहना पड़ता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, श्रोत्र इंद्रिय यहां होते हुए भी मन के अंतःकरण के साथ कनेक्शन न होने के कारण वह शब्द को नहीं जान पा रहा है। शब्द के अर्थ को जानने के लिए अंतःकरण और श्रोत्र इंद्रिय का संबंध होना चाहिए, और यह अंतःकरण और श्रोत्र इंद्रिय यह प्रकृति के सत्वगुण का कार्य समष्टि और व्यष्टि अपंचीकृत भूतों से बने हुए हैं। तो जीवात्माओं में जानने की जो क्षमता है वह शिव से एक होने के कारण नहीं, प्रकृति से एक होने के कारण है। सत्वगुण ज्ञान दाता है, ज्ञान का उत्पादक है, सत्व प्रकाशक है, अतः ये जानने की जो क्षमता है वह प्रकृति से जुड़ने पर ये जानने की क्षमता जीव में आ जाती है। ये परमेश्वर से जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन, पूर्व पक्ष सांख्य दर्शन। इसी तरह जीवात्मा में कुछ कर्म करने की जो क्षमता है, क्रिया शक्ति, ये परमात्मा से जुड़ने के कारण करने की शक्ति आई है, ये बात नहीं है। क्यों नहीं महाराज? फिर कहां से आई? बोले वही प्रकृति में जो तीन गुण है, दूसरा गुण है रजोगुण। रजक क्रियात्मक है, गीता में स्पष्ट कहा है, रज चंचल है, क्रियात्मक है। अतः ये कर्म करने की क्षमता वाले इंद्रियां, क्रियाशक्ति प्रदान हाथ, क्रियाशक्ति प्रदान वाणी, क्रियाशक्ति प्रदान पायु, क्रियाशक्ति प्रदान उपस्थ, क्रियाशक्ति प्रदान पाद है, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं कि नहीं? वेदांति क्या मानता है? इन पांच कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति किससे मानता है? व्यष्टि रजोगुण से। और पंच प्राणों की उत्पत्ति किससे मानता है? व्यष्टि समष्टि रजोगुण से। और प्राण और क्रिया का संबंध होते ही, कर्म इंद्रियों का संबंध होते ही व्यक्ति काम करने लग जाता है। कर्म इंद्रियां हैं, प्राण का संचार रुक जाए तो कर्म नहीं कर सकता है। पैरालिसिस हो गया हाथ में तो पानी इंद्रिय तो ही है, लेकिन वो प्राण का संचार रुक गया। प्राणन जो क्रिया शक्ति का संचार है वो रुक गया, रुक गया तो फिर हाथ काम नहीं कर सकते। तो वह प्राण और कर्म इंद्रियां, ये दोनों समष्टि और व्यष्टि रजोगुण से बने हुए होने के कारण जीव में जो कुछ करने की क्षमता है वह प्रकृति के रजोगुण से जुड़ने के कारण आया है। परमात्मा से जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अपना ही तर्क है। और सुषुप्ति अवस्था में न करने की क्षमता रहती है न जानने की क्षमता रहती है, तो मूढ़ता की जो अवस्था है वो कहां से आई? तो बोले वो तमोगुण के चलते है मूढ़ता का अवस्था है। तमो आवरणकम मोहात्मकम आवरणकम, गीता में स्पष्ट गुणत्रय विभाग में ये बात आ गई है, ये सांख्य सिद्धांत है। ज्ञानम न चेत स्वयं सिद्धं जगत अंधतमो भवे। यदि परमात्मा में ज्ञान स्वरूपता स्वयं न होता तब जगत सब के सब अंध हो जाता है, कुछ भी करने की कुछ भी जानने की क्षमता न होती। तो ये जो ज्ञान पना है वो परमात्मा से ही है। हम ये कहते हैं कि प्रकृति के सत्वगुण से कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, रजोगुण से कर्म इंद्रियां बनती हैं। ये नियम को जानकर बनाया किसी ने कि बिना जाने बनाया? अपने आप हो गए? किसने जाना, किसने जाना? तो ये स्वयं वो परमात्मा जो कि प्रकृति से संबंध रखे बिना जानने वाला परमात्मा है, इसलिए उसने अपने स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा ये नियम बनाया और उस नियम के अनुसार ये काम हुए। तो इस बात को कोई भी अपलाप नहीं कर सकता है, वेदांत तो उसका खंडन करता है। न चेद अस्य क्रिया का चेद व्यवहार कथम भवेत। यदि ऐसा न होता, ये अन्वय व्यतिरेक है। यद सत्य तद सत्यम, यद अभावे तद अभाव। ज्ञान क्रिया परमात्मा में होने पर ही परमात्मा से जुड़े हुए जीवात्मा में ज्ञान क्रियता है, और यदि ज्ञान क्रियता परमात्मा में न होते तो परमात्मा से जुड़ने पर भी जीवात्मा में ज्ञान क्रिया न होती। अब दूसरी बात है, ज्ञान क्रिया तो तुम्हारे हिसाब से प्रकृति से जुड़ने पर हो जाएगा, तुम कह रहे हो। तुम्हारे हिसाब से तो प्रकृति में सत्वगुण से ज्ञानता और रजोगुण से क्रियता, ये प्रकृति से जुड़ने पर जीवात्मा में आ जाएगा कहते हो। अब रही बात जीवात्मा में जो चेतनता है किससे जुड़कर आने का आएगा, उसका उत्तर दो हमको। चेतना ये किससे जुड़कर आएगा भाई? प्रकृति स्वयं स्वरूपतः, तुम भी जड़ मानते हो, हम भी जड़ मानते हैं। प्रकृति को तो सांख्य भी जड़ मानता है, वेदांत भी जड़ मानते हैं। तब जड़ होते हुए भी रजोगुण के चलते क्रियाता और तमो सत्वगुण के चलते ज्ञानता प्रकृति में मानता है। सांख्य वेदांत ज्ञानता और क्रियाता और चेतनता ये तीनों परमात्मा में मानता है, प्रकृति में नहीं मानता है। सांख्य परमात्मा में यानी आत्मा में केवल चेतना मानता है, आत्मा में केवल चेतना मानता है, ज्ञान क्षमता और क्रिया क्षमता नहीं मानता, चेतना मानता है। और वेदांत चेतना के साथ साथ ज्ञान और क्रिया दोनों को भी मानता है। तब वेदांती ने यह प्रश्न किया, तुम कह रहे हो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रकृति से जुड़ जाने पर आ जाएगा, लेकिन जीव में जो चेतना शक्ति है वो किससे जुड़कर आया? प्रकृति से जुड़कर चेतना आएगा? प्रकृति में चेतना ही नहीं है तो जुड़कर कहां से आएगा? फिर कहां से आया? तो बोले वो तो फिर आत्मा से जुड़कर आएगा। तो एक ही तो बात है, जब आत्मा से जुड़कर ही जीव में चेतना आती है तब उसी आत्मा से जुड़कर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति भी आ जाएगी। आत्मा से अलग जीव को मानना ये मूर्खता है। उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकारी उपाश्रया क्रिया करोति गच्छत्युन्मार्ष्टि चिनत्तीति प्रतीयते जो जीव में सब शिवो ब्रह्मादि देहेषु। अंत में इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत जितने भी देह हैं, शरीर हैं, सारे शरीरों में, उसके बीच में आप और हम भी आ गए हैं, ब्रह्मा का शरीर और चीटी के शरीर के बीच में हम भी आ गए हैं, हैं? ब्रह्मादि देहेषु शिवो ब्रह्मादि देहेषु सर्वज्ञ इति भासते देवतिर्यं मनुष्येषु किंचित् ज्ञस्त तारतम्यता। वही शिव ब्रह्मादि देह में वो सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होता है, और वही शिव मनुष्य चींटी आदि अन्य इतर देहों में अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत होता है। अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत होना और सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होने में वह ब्रह्मा का शरीर और हम लोगों के शरीर के कारण सर्वज्ञ और अल्पज्ञ की है। वास्तव में शिव न सर्वज्ञ है न अल्पज्ञ है, शिव केवल शिव है, कल्याण रूप है, चैतन्य रूप है। जैसे हमने पहले कहा था, बिजली न ठंडा करती है न गर्म है, बिजली जैसा है वैसा है, यंत्रों की कैपेसिटी है। इसी तरह सर्वज्ञ उपाधि ब्रह्मा की उपाधि वो शुद्ध है, परिष्कृत है और बड़ी है, इसलिए वो सर्वज्ञ हो गए उसमें जाने पर। और चीटी की उपाधि छोटी है, स्थूल है, इसलिए उसमें अल्पज्ञ हो गया। शिव ही ब्रह्मादि देह में सर्वज्ञ और अन्य देहों में अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत हो रहा है। उपाधि उसी को कहते हैं, जरायुजो अंडजश्चैवं स्वेदज उद्भिदद्विदः ये ते चतुर्विदा पूर्व कर्म स्वन्योनुवृत्तयः। जीवों का ही ये चार भेद हैं, उद्भिज्य जरायुज अंडज और पिंडज, ये कर्म के अनुसार इनका शरीर आदि ग्रहण होता है और शरीर के निर्माण में कर्म हेतु है, परंतु उन सभी में एक ही शिवा अहम अहम के रूप में स्फुरित हो रहा है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता स्वप्न कल्पैव कल्पना साक्षात्कृते अनवच्छिन्न प्रकाशे परमात्मनि। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्वप्न कल्पैव कल्पना, अनेक कल्प युग कल्पों की कल्पना, जैसे स्वप्न के अंतर्गत भी अनेक युगों की कल्पना होती है, उसी तरह जागृत भी उसी तरह है, इससे भिन्न अन्यथा नहीं लेना। और यहां ईश्वर गुरु और आत्मा को एक माना गया है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ईश्वर कहो, जीव कहो, गुरु कहो, ये तीनों की उपाधि अलग अलग होने पर भी चेतन तत्व मूल तत्व एक ही शिव है। शिव ही ईश्वर होकर सर्वशक्तिमान हुआ, शिव ही गुरु होकर ज्ञानदाता बना, और शिव ही जीव होकर श्रोता बना, ज्ञान ग्रहण करता बना। ये उपाधियों का भेद है, तत्वों का भेद नहीं। ये प्रथम श्लोक मानस उल्लास का, ये दक्षिणामूर्ति के प्रथम श्लोक का ये समापन हो गया। कल से दूसरा श्लोक, आगे के श्लोक को अब हम झड़प से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।